ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 5 दिसंबर की मुरली सुनेंगे। बाबा ने कहा सब गुण तो चाहिए चाहिए, लेकिन आज विशेष 2 गुण पर बाबा ने कहा। कौन से? आज्ञाकारी और वफादारी। बाबा ने कहा बस श्रीमत पर चलो, आज्ञा मानो, सब कल्याण होता जाएगा। जिम्मेवारी बाबा की है, केवल हमको आज्ञाकारी और वफादारी बनना है। दूसरा, बाबा ने कहा भक्ति में लोग, गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं, बाबा भी हमको देते हैं आशीर्वाद, सब दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन उसकी युक्ति बताते हैं, वो युक्ति है निश्चय से अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। तीसरा, बाबा ने यह भी कहा धन सफल कैसे करो, इस संगम युग पर सेवाएं करो, दुआएं लो, इससे ही आपका धन सफल होता है। सुनते हैं बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, ये पतित दुनिया एक पुराना गांव है, ये तुम्हारे रहने लायक नहीं है, तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। मीठे बच्चे, ये पतित दुनिया एक पुराना गांव है, ये तुम्हारे रहने लायक नहीं, तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? उत्तर है, बच्चे तुम आज्ञाकारी बन, बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? बाप है, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चला, यही प्रॉब्लम आती है ना, हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपने को, तो बाबा के तुम अपनी मत नहीं चलाओ, बस शिव बाबा की मत समझ कर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। ओम शांति। पहली पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो, बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग तो आशीर्वाद करते हैं, ये बाबा भी कहते हैं बच्चे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, सिर्फ अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये तो अति सहज है, इसको कहा जाता है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए, लॉन्ग लॉन्ग भी कितना, तो बाबा समझाते पूरे 5000 वर्ष पहले ये राजयोग सिखाया था। ये बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते और बच्चों बिगर कोई समझ भी ना सके। गायन भी है. कौन सा गायन है? आत्माएं बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल. तो बाबा कहते तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो. अब स्मृति आई है, सब चिल्लाते हैं हे पतित पावन. कलयुग में पतित ही तो होते हैं और सतयुग में होते हैं पावन. क्यों? क्योंकि वो है ही पावन दुनिया. ये पुरानी दुनिया है, पतित दुनिया है, रहने लायक नहीं है. समझ रहे हैं ना क्या दुनिया का हाल है? हैं? बाबा कहते रहने लायक ही नहीं है, परंतु माया का भी प्रभाव कोई कम नहीं है. यहां देखो 100-125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं. भारत में भी है ना, इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज की बिल्डिंग है. हाँ, बड़े बड़े शहरों में. तो माया का प्रभाव देखो, इनको माया का पंप कहा जाता है. माया का जलवा ऐसा है, जो कहो स्वर्ग चलो तो क्या कहते हैं, अरे हमारे लिए तो स्वर्ग यहां ही है. इसी को तो माया का जलवा कहा जाता है. परंतु तुम बच्चे जानते हो, कितनी भी बड़ी इन्वेंशंस हो जाएं, साइंस की मंजिल इतनी बड़ी भी हो, बहुत सब प्रकार का धन सुख हो, लेकिन तुम जानते हो, क्या जानते हो, कि ये तो पुराना गांव है. इसको नर्क, पुरानी दुनिया और रोर ऑफ नर्क कहते हैं. अंदर ही अंदर आत्मा में क्या भरा पड़ा है, तृष्णाएं, दूसरों को दुख देने की भावना, अपोजिशन, जेलसी, ईर्ष्या, ये बाबा कह रहा है. ऊपर से भले बड़ी बिल्डिंग हो, अंदर से क्या है, रोर ऑफ नर्क. और सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है. ये अक्षर है ना, इनको विशियस वर्ड तो सब कहेंगे, वाइसलेस वर्ड तो ये स्वर्ग था. स्वर्ग को कहा जाता है वाइसलेस वर्ड, नर्क को कहा जाता है विशियस वर्ड. इतनी भी सहज बात क्यों नहीं किसी की बुद्धि में आती? मनुष्य तो बहुत दुखी है, कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, दिन प्रतिदिन बॉम्ब सादे भी ऐसे बनाते रहते हैं. किस प्रकार के बॉम्ब्स हैं? अभी तो कार में बैठो, सांस लो, चले जा. इतनी रिफाइंड टेक्नोलॉजी है बॉम्ब्स की, बात तो बनाते ही रहते हैं. बस जो गिरे बम, मनुष्य खत्म हो जाए. परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते भी नहीं कि अभी क्या होने वाला है. मनुष्य अपने ही धंधों में पड़े हैं, कारोबार में, मोह ममता में, बाबा इनका नहीं समझते क्या होने वाला है. ये बातें कोई समझा भी तो नहीं सकता सिवाय बाप के कि क्या होने वाला है. आप सब ब्राह्मण समझते हैं क्या होने वाला है, ये भी याद रखना है, क्या होने वाला, कभी भी कुछ हो सकता है. हाँ, बाबा कहते कोई नहीं समझता इस दुनिया में. पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना गुप्त में हो रही है. और तुम बच्चों को कहा जाता है, हाँ, बाबा टाइटल देता है, गुप्त दुनिया हम बना रहे हैं, तो हमारा कौन सा टाइटल होगा? गुप्त वॉरियर्स। कोई समझते हैं कि क्या तुम लड़ाई कर रहे हो, तुम्हारी तो लड़ाई है, किसके साथ है? पांच विकारों के साथ। सबको कहते हो पवित्र बनो, एक बाप के बच्चे हो, प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे, तो सब भाई बहन हो गए। समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। प्रजा पिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं, एक तो नहीं है, क्योंकि नाम ही है प्रजा पिता। लौकिक बाप, लौकिक बाप को कभी प्रजा पिता नहीं कहेंगे। प्रजा पिता ब्रह्मा है, उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ब्रह्मा कुमार्स कुमारियां ठहरे, परंतु समझते तो नहीं है। जैसे पत्थर बुद्धि हैं। अच्छा, फिर समझने की कोशिश भी नहीं करते। प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए, विकार में तो जा ना सके। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजा पिता अक्षर बहुत जरूरी है, ये अक्षर जरूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता, तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिख सुधारना पड़े। ये है बहुत जरूरी अक्षर। कौन सा? प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारीस कुमार ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ना पूरा नाम, लेकिन विदेशों में तो हम खाली ब्रह्मा कुमारीस कहते हैं, वहां तो नहीं लिखते। यहां तो इंडिया में तो लिखते हैं बड़े बड़े बोर्ड पे, बावन का इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो बावन का ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है, नाम ही खुट गए हैं, तो मेल का नाम फीमेल पर रख देते हैं। इतने नाम कहां से लाएं? तो सब ड्रामा प्लान अनुसार होता है। तो बाप का आज कौन से गुण पर बाबा बता रहे हैं? दो गुण, वफादारी और आज्ञाकारी। तो बाबा ने कहा बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है, इतना आसान नहीं है। बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं, समझ नहीं सकते ये कौन है। तब शिव बाबा कहते मेरी आज्ञा को भी नहीं समझ सकते, उल्टा कहें या सुलटा तुम समझो शिव बाबा कहते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? शिव बाबा की। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल वो होने से सब ठीक कर देगा। हाँ, शिव बाबा के पास तो पावर है, किसकी भी बुद्धि को बदल सकता है ना, टच कर सकता है, उसके प्रकंपन उससे ठीक कर देगा उसकी सोच को। तो बाबा ने कहा भले आप समझो इनके कहने से ब्रह्मा बाबा के डायरेक्शन से कुछ नुकसान है, लेकिन अंदर से ये समझो कि शिव बाबा ठीक कर देगा। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो रिस्पॉन्सिबल वो होने से वो तो सब ठीक कर देगा। शिव बाबा का ही समझते रहो तो तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। परंतु मुश्किल समझते हैं, हाँ, ये कारण बाबा बताते हैं। मुश्किल कहाँ आती है? कोई फिर अपने मत पर चलते रहते हैं, अपनी मत मन अपनी इच्छाएं। तो बाबा ने कहा अपनी मत पर चलते रहते हैं। बाप तो कितना दूर से आता है। तुम बच्चों को डायरेक्शन देने, समझाने, और कोई के पास तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है ही नहीं। सारा दिन ये चिंतन चलना चाहिए, क्या लिखें जो मनुष्य समझे। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्यों की दृष्टि पड़े। तुम ऐसा समझाओ, हाँ बाबा ने कहा किस ढंग से समझाओ, ऐसा समझाओ कि जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही ना पड़े, तो उसको क्लिक होता जाए, समझ आता जाए। बोलो। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। जो अच्छी रीत याद में रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। दो बातें बाबा ने बताई कैसे दुख दूर होंगे। जब आप अपने को हाँ इतना सही रूप से आत्मा समझना, फिर बाबा को याद करना तब। और दूसरा अच्छी रीत याद में रहेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। है तो सेकंड की बात। मनुष्य तो क्या क्या पूछते रहते हैं। तुम कुछ भी नहीं बताओ, बोलो। क्या बोलो उसको जो बहुत प्रश्न पूछते हैं? जास्ती पूछो मत, पहले एक बात का निश्चय करो। प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता मिलेगा ही नहीं। हाँ, कईयों को आदत होती है ना, एक के बाद एक प्रश्न पूछते हैं। तो बाबा ने कहा उनको बोलो भाई, पूछो नहीं, निश्चय करो, नहीं तो आप जंगल में पड़ जाओगे, फिर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। जैसे फॉगी में मनुष्य मूंझ जाते हैं, फिर निकल ही नहीं सकते। ये भी ऐसे है, मनुष्य कहां से कहां माया तरफ निकल जाते हैं। इसलिए पहले सबको एक ही बात बताओ। कौन सी बात? अभी तीसरी बार बाबा बता रहे हैं। कौन सी बात? तुम आत्मा हो, अविनाशी आत्मा हो। तुम तो अविनाशी आत्मा हो, बाप भी अविनाशी है। बाप तो पतित पावन है और तुम तो पतित हो। अब या तो घर जाना है या नई दुनिया में जाना है। पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक तो आते ही रहेंगे, जो पूरा पढ़ेंगे नहीं तो वो जरूर पीछे ही तो आएंगे। कितना हिसाब है। और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है पहले कौन जाएगा। स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं, दोड़ी पेन हाथ लगाकर आओ, पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है। और यहां बेहद की बात है, बेहद का इनाम मिलता है। लेकिन नंबर वन लेने के लिए क्या करो? दो बातें बाबा बता रहे हैं अभी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कौन सी दौड़ी पहनो? याद की यात्रा पर रहो। और दूसरा दैवी गुण धारण करो। कौन सी दो बातें हैं? बाप की याद में रहो और दूसरा दैवी गुण धारण करो। सर्व गुण संपन्न तो यही तो बनना है। इसलिए बाबा एक युक्ति बताते हैं। कौन सी युक्ति? बाबा बार बार हर हफ्ते याद दिलाते हैं ये बात। चार्ट रखो याद की यात्रा का, चार्ट रखो तो पता तो पड़ेगा कि हम फायदे में चल रहे हैं या घाटे में। परंतु अभी बाबा क्या कंप्लेन करते हैं, क्या होता है, बच्चे चार्ट नहीं रखते। बाबा तो कहते हैं बच्चे करते नहीं हैं, बहुत थोड़े करते हैं, इसलिए माला भी कितनी थोड़ों की है। आठ की जो माला है, आठ आत्माएं, बड़े स्कॉलरशिप लेंगे। फिर दूसरी कौन सी माला है? 108 प्लस में रहते हैं। फिर प्लस में कौन जाएंगे? बादशाह और रानी। बहुत जरा सा फर्क रहता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कौन कौन सा पुरुषार्थ करो, चार्ट रखो, किस चीज का? बाबा की याद और दैवी गुणों का। और दूसरी बाबा बात कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करते रहो, बस यही है याद की यात्रा। सारे दिन में बार बार रिवाइज करना है मन में, मैं कौन हूं। रिवाइज नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, तो पुराने संस्कार आते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बस इसी यात्रा पर रहो, याद की यात्रा बस। और फिर बाबा का मैसेज भी दो, टिक टिक करने की दरकार तो नहीं है। मन मना भाव दे के सब संबंध छोड़, पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग करना है। क्यों त्याग करना है? बाबा कारण बताते हैं, क्योंकि अब वापिस घर जाना है। तो अशरीर तो बनना ही है। यहां बाबा याद दिलाते हैं, फिर सारे दिन में बिल्कुल याद नहीं करते। दो कारण बाबा ने बताए। यहां तो बाबा पुरुषार्थ करा लेते हैं, याद में कैसे रहो बताते हैं, फील कराते हैं, एहसास कराते हैं, फिर बाबा ने कहा सारे दिन में याद नहीं करते, श्रीमत पर भी नहीं चलते और बुद्धि में भी नहीं बैठता। तीन बाबा बता रहे हैं कारण, याद नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते और बुद्धि में नहीं बैठता। तो फिर बाबा कहते कि नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बनना है। बाबा ने हमको राजभाग्य दिया, फिर हमने गंवा दिया 84 जन्म लेते लेते। लाखों वर्ष की बात नहीं, बहुत बच्चे अल्लाह को ना जानने के कारण फिर बहुत प्रश्न भी तो पूछते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जो बहुत प्रश्न पूछे उसको क्या कहो? फिर बाबा कहते हैं उसको ये कह दो, जास्ती टिक टिक नहीं करो, नहीं पूछो, लेकिन किसमें फायदा है? बाप को याद करो, फायदा तो उसमें ही है। तो बाबा ने कहा उसको कहो मां एकम याद करो, तभी तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और दैवी गुण धारण करो तो देवता बन जाएंगे। और कुछ क्या पूछने की दरकार है? अल्लाह ना समझ बेटे की टिक-टिक करने से खुद भी मुंह जाते, फिर तंग हो पड़ते हैं। कई लोगों की आदत होती है ना, समझते ही नहीं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो तो बाबा ने कहा फिर खुद ही मूंज जाते और तंग हो जाते। तो बाबा कहते हैं पहले अल्लाह को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, बाकी जानने का कुछ रहेगा नहीं। इसलिए सात रोज रखे जाते हैं, सात दिन का कोर्स कराते हैं ना, तो बाबा ने कहा सात रोज में बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो सात रोज माना एक घंटा रोज सात बार, तो बाबा ने कहा समझ सकते हैं, परंतु नंबर वार समझने वाले होते हैं, कोई तो कुछ भी समझते नहीं। ऐसा भी होता है, हाँ कोर्स कराओ फिर उनसे पूछो कुछ समझ ही नहीं आता उनको, फिर दोबारा कराओ। हाँ एक बार हम लोग रहते थे ना दिल्ली पांडव में गुलजार दादी के साथ, मैंने किसी को कोर्स कराया, फिर दादी ने उसका टेस्ट लिया, उसने उत्तर नहीं दिया, दादी ने कहा इसको दोबारा कोर्स करा दो, लेकिन दादी ने कहा फोर्स भरो। मैंने कहा वो कौन सा फोर्स का कोर्स है, वो है उसको समझाओ कि कोर्स के बाद माया से लड़ाई शुरू करो, आलस्य छोड़ो अवगुण छोड़ो, ये वाला कोर्स कराओ ताकि समझे ये ज्ञान क्या है। तो बाबा कहते नहीं तो कुछ समझते ही नहीं है, कोर्स के बाद भी नंबर वार है, कोई तो कुछ भी नहीं समझते, फिर वो क्या राजा रानी बनेंगे, एक के ऊपर राजाई करेंगे क्या। हर एक को अपनी प्रजा बनानी है, क्योंकि राजयोग है ना, इसलिए हरेक को राजा बनना है। बाबा कहते हैं हरेक को अपनी प्रजा बनानी है। टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो बेचारे भल कितना भी बड़ा बड़ा उनका मर्तबा है, परंतु हाँ ये विशेष बात है, कितने लोग हैं, बहुत बड़ी जमीनें हैं, मकान हैं, चीजें हैं, बहुत कुछ है, स्टेटस है, परंतु बाप जानते हैं ये तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, बाकी थोड़ा समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों का तो विनाश होना ही है, और हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि कितनी है वो तो समझ सकते हैं, उसकी निशानी बाबा बता रहे हैं। प्रीत बुद्धि, कोई कहते हैं एक दो घंटा याद रहती है, तो बाबा कहते हैं क्या लौकिक बाप से तुम एक दो घंटा प्रीत रखते हो क्या। सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हो, तो यहां भल बाबा बाबा कहते हैं परंतु हड्डी प्रीत थोड़ी है। हाँ बाबा ये कह रहे हैं कि दिल से हम बाबा को प्यार करें प्रीत करें, तो बाबा ने कहा खाली कहने से नहीं है ये सब कुछ, लेकिन हड्डी प्रीत चाहिए। बार बार कहते हैं शिव बाबा को याद करते रहो। सारी बात तो दिल की है, यानी राजयोग माना ही क्या, दिल से चॉइस से सब कुछ करो, अपने दिल से करो। तो बाबा कहते याद करो बाबा को, और उसमें बाबा ने ऐड किया सच सच याद करो। रियली दिल से भी करो, प्रीत बुद्धि रखो, और साथ साथ सच सच याद करो। बाबा ने ये भी कह दिया यहां चलाकी नहीं चल सकती। हम कहें हमने तो बहुत योग किया और अंदर से हर प्रकार की इच्छाएं जागृत हो रही हैं, वो योग तो नहीं है ना। अंदर से चंचलता है, मन बहुत विचार कर रहा है, कंट्रोलिंग पावर है ही नहीं, वो तो याद नहीं है। बाबा कहते यहां चलाकी नहीं चल सकती। बहुत हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, फिर तो वो उड़ने लग पड़े। बाबा बस हम तो जाते हैं सर्विस पर बहुतों का कल्याण करने। हाँ बाबा ये भी एक निशानी बता रहे हैं, चलाकी नहीं चलेगी, सच सच याद है, यदि है याद इतनी तो उसकी निशानी होगी, वो सेवा पर जाएंगे, कल्याण करेंगे, बहुतों को पैगाम देंगे, उतना फिर याद में भी रहेंगे। और कई बच्चियां भी कहती हैं बंधन है, अभी देखो बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई, कई कहते हैं बंधन है, बाबा कहते हैं अरे बंधन तो सारी दुनिया ही कोई है, अभी बंधन को युक्ति से काटो, युक्तियां तो बहुत है। कल मर पड़ते हैं फिर बच्चे कौन संभालता है, हाँ लौकिक दुनिया में भी कोई मर जाता है तो कौन संभालता है बच्चे, जरूर कोई ना कोई संभालने वाले निकल पड़ेंगे। अच्छा चलो अज्ञान काल में भी दूसरी शादी कर लेते हैं, अभी तो इस समय शादी करना भी मुसीबत है, चलो किसको थोड़ा पैसा दे दो, बोलो बच्चों को संभालो, तुम्हारा ये मरजीवा जन्म है, जीते जी मर गए फिर पीछे कौन संभालेगा, तो जरूर है नर्स रखनी पड़े। बाबा अच्छी बता रहे युक्ति, चलो कोई ना कोई किसी को पैसे देकर उसकी संभाल करवा दो, पैसे से क्या नहीं हो सकता, लेकिन बंधन मुक्त जरूर बनना है। सर्विस के शौक वाले अपने आप ही भागेंगे, दुनिया से मर गए, यहां तो बाबा कहते, यहां क्या कहते हैं बाबा, मित्र संबंधियों आदि का भी उद्धार करो, सबको पैगाम दो। कौन सा पैगाम, मन मना भव का, कि किसी का भी मन इधर उधर जा रहा है उसको एकाग्र करने की युक्ति बताओ, मन मना भाव, तो तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बन जाएं। तो बाबा कहते और तो ऊपर से आते हैं, फिर उनकी प्रजा भी उनके पिछाड़ी आती है। बाबा एग्जाम्पल देते क्राइस्ट का, जैसे क्राइस्ट है सबको नीचे ले आते हैं, नीचे पार्ट बजाते बजाते जब अशांत होते हैं तो कहते हमको शांति चाहिए, बैठे तो थे शांति में, फिर उनका क्राइस्ट प्रिसेप्टर पिछाड़ी आया तो उनके पीछे आना पड़ता है, फिर कहते हैं पतित पावन आओ, ये कैसा खेल बना हुआ है, वो अंत में आकर लक्ष्य लेंगे, बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है, मन मना भाव का लक्ष्य आकर लेंगे, अभी तुम बैगर जो प्रिंस बनते हो, इस समय के जो साहूकार हैं वो बैगर बनेंगे, इस खेल को जरा भी कोई जानते नहीं, सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कोई तो गरीब भी बनेंगे, ये बड़ी दूरादेश बुद्धि से समझने की बातें हैं, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा कि हम कैसे ट्रांसफर होते हैं। तुम पढ़ते हो तो बाबा ने कहा तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, अब तुम हो संगम पर, पढ़कर पास करेंगे तो दैवी कुल में जाएंगे, अभी तुम कौन से कुल में हो, संगम युग पर, ब्राह्मण कुल में ये बातें तो कोई समझ ना सके। भगवान पढ़ाते हैं, जरा भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। निराकार भगवान जरूर आएगा। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, उसको तुम जानते हो और पार्ट बजा रहे हो। त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाओ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है, सिर्फ नाम रख दिया है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात, हाँ, सारी मुरली बाबा चार पांच बार समझा के आए, कौन सी मुख्य बात है आज की मुरली की? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो जंक उतर जाए, जो रस्ट बैठ गई आत्मा पर, नेगेटिविटी की, जेलसी की, आलस्य की, जो भी प्रकार की जंक है, बाबा ने कहा ये तो खत्म हो सकती है जब आप बाबा को याद करें। स्कूल में जितना अच्छी रीत पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होगी, तुमको 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है, कम बात है क्या? यहां भले वेल्थ है, इस लौकिक दुनिया की बाबा बात कर रहे हैं, यहां भले वेल्थ है परंतु टाइम नहीं है जो पुत्र पोतरे खा सके। तो बाप ने तो सब कुछ इस सेवा में लगा दिया, तो कितना जमा हो गया। हाँ, ब्रह्मा बाबा ने सेवा में लगा दिया। हाँ, बाबा ने कहा सब का थोड़ी जमा होता है, इतने लखपति हैं, पैसा काम आएगा नहीं और बाप लेंगे भी नहीं, जो फिर देना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बंधन काटने की युक्ति रचनी है। जिगरी बाप से प्रीत रखनी है, बाप का सबको पैगाम देना है, सबका कल्याण करना है। दूसरा, दूरादेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है, बैगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। तो आज सारे दिन का होमवर्क मिला, याद का सच्चा सच्चा चार्ट, वरदान। संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भाव, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भाव, जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की भावना, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ ना हो। कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन, माया के झमेलों से घबराने की बजाय परमात्म मेले की मौज मनाते रहो। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत बनने के लिए आशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभव का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन, कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करें। ये बंधन आत्मा को टाइट कर देते हैं। इसके लिए सदा निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे बनने का अभ्यास करो। कितने बंधन बताए, रिपीट करिए। शरीर का बंधन, दूसरा कर्म का बंधन, तीसरा व्यक्तियों का बंधन, चौथा वैभव का बंधन, पांचवा स्वभाव संस्कारों का बंधन। पांच, कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करे, नहीं तो ये बंधन आत्मा को टाइट कर देते हैं। इसके लिए सदा न्यारे और प्यारे बनने का अभ्यास करो। ओम शांति।
ओम शांति। आज आदरणीय रजनी बहन जी विशेष प्यारे बाप दादा के महावाक्य सुनाने हम सभी के बीच में आए, हम जरूर एक हाथ की ताली से दीदी जी का अभिवादन करते हैं। और दूसरा विशेष आज हमारी सभा में यहाँ पर गुजरात का सौराष्ट्र से जूनागढ़ सब जोन यहाँ पर आकर के पहुंचा है। बिना बहन स्टेज पर आ जाए। तो हम सभी ने समाचार सुना था और आदरणीय दमयंती दीदी जी जो कि गुजरात से, गुजरात सब जोन के मोस्ट सीनियर, जिन्होंने साकार बाबा और मम्मा की पालना ली थी और इतनी सेवाएं की, इतनी अनेक बहनों को उन्होंने तैयार किया जो आज की डेट में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। और उसमें से विशेष आदरणीय बीना दीदी जी जो बहुत वर्षों से दीदी जी के अंग संग रहे, दीदी जी को उन्होंने करीब से देखा, उनसे बहुत कुछ सीखा जी। सभी, हाँ गीता दीदी जी आप भी मंच पर आ जाएं। सभी जूनागढ़ सब जोन के वरिष्ठ बहने यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा हाथ खड़ा करके सभा को शिव शक्तियां अपना साक्षात्कार कराएं। देखिए पूरा झुंड है, नहीं बहुत सारे हाँ ठंडी में तो हम चाहेंगे कि बिना दीदी जी, जरूर दीदी जी के बारे में और जो दीदी जी का अव्यक्त वतनवासी होने का समय ड्रामा बना, तो जो भी सेवाएं वहां पर हुई और दीदी जी के अंग संग से जो पालनाएं पाई, प्रेरणा पाई और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी दीदी जी आपको दे करके गए हैं, तो जरूर आप सुनाएं ताकि सभी को प्रेरणा मिले।
ओम शांति। आज विशेष जूनागढ़ सब जोन की तरफ से बाबा के बेहद घर में आना हुआ, परम श्रद्धेय दमयंती दीदी 13 नवंबर को व्यक्त से अव्यक्त हो गए। आदरणीय दीदी जी की यह बेहद की लंबी यात्रा हमने करीबन 45 इयर्स दीदी के साथ मुझे हुआ, उस यात्रा के दौरान यह देखने को मिला, अनुभव किया कि आदरणीय दीदी जो साकार मम्मा और बाबा की पालना में पले, दीदी को करीबन 16-17 साल की उम्र थी और हमारी मातेश्वरी मम्मा ने उसको समर्पित कर दिया था और उसकी यात्रा के अंदर दूसरी एक बात हमें बहुत ही याद और प्रेरणा देती है। 19-20 साल के थे और साकार बाबा ने दीदी को गुजरात की सेवा में जानकी दादी के साथ भेजा। जब गुजरात की सेवा का प्रारंभ करने का संकल्प बाबा को आया तो दादी को बाबा ने कहा कि जनक, तुझे गुजरात की सेवा में जाना है। दादी ने कहा, जी बाबा, लेकिन एक संकल्प मुझे आता है कि मैं हिंदी बोलती हूँ, गुजरात में तो सभी गुजराती होते हैं, तो कौन समझ सकेगा मेरी भाषा, तो बाबा अगर कोई गुजराती कन्या मिल जाए तो अच्छा है। उसी दौरान उसी दिन नलिनी दीदी के साथ दमयंती दीदी रहते थे घाटकोपर में, वो यहाँ पर मधुबन में आए। बाबा को पता चला गुजराती कन्या आई है और बाबा ने तुरंत दीदी को बुलाया और कहा, बच्ची, जनक के साथ गुजरात की सेवा में जाएंगी? और तुरंत दीदी ने कहा, जी बाबा। और दादी जानकी के साथ दमयंती दीदी गुजरात की सेवा में आई। करीबन 8 मास दादी के साथ रहने का मौका मिला और उसी दौरान गुजरात की सेवा पूर्ण जोश से शुरू हो गई और उसी सेवा के दौरान परिवार के परिवार निकले और उसमें से हमेशा हमारी चंद्रिका दीदी, वेदांती दीदी कहती थी कि दमयंती दीदी वो हमारी माँ है। क्यों? क्योंकि उसी के द्वारा ये सारे परिवार निकले। पूर्णिमा दीदी नरियाद वाले भी वहां से निकले, हमारी आदरणीय गीता दीदी का परिवार भी अहमदाबाद से निकला उसी टाइम। तो एक सेवा की लहर फैलाते 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 फिर दीदी का पाठ शुरू हुआ सौराष्ट्र की सेवा में और जूनागढ़ के अंदर शुरुआत की। दीदी के अंग संग हमारी आदरणीय गीता दीदी भी थी और सेवा की धूम मचाते मचाते आज जूनागढ़ सब जोन के अंदर 160 जितनी बहनों को दीदी ने तैयार किया, 55 जितने जूनागढ़ सब जोन के सारे छोटे बड़े सेवा केंद्र है। तो ऐसी एक महान आत्मा जिसको हमने करीब से देखा, उसके दिल बिल्कुल निखालस था, सरलता की मूर्ति थी, उसके अंदर निर्मलता, पवित्रता और सच्चाई, सफाई, वो मैंने बहुत करीब से दीदी को देखा था। और दीदी के जीवन की एक महान धारणा जो उसकी अंतिम घड़ी में हम सभी ने पाया, शॉर्ट में बता देती हूँ, उसका फाउंडेशन नियम संयम धारणा तो था ही, लेकिन अमृत वेले का योग खुद ने भी कभी मिस नहीं किया और हम सभी को भी मिस नहीं करने दिया। जो लास्ट घड़ी तक, जब उसका अंतिम समय बाबा के पास जाने का आया, 13 नवंबर अमृत वेले का 4 बजा था और 4 बजे दीदी की आंखें वैसे बंद थी और उसने खोल दी। जैसे आंखें खोली तो हम सभी बहनें उसके कमरे के अंदर सारी रात योग कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया था कि दीदी अभी हमारी बाबा के पास बस थोड़े समय में जाएंगे। तो जैसे ही 4 बजे उसने आंख खोली तो हम खुश हो गए सभी कि दीदी ने आंखें खोली। तो उसने हम सभी बहनों को एक एक को इतनी पावरफुल दृष्टि दी और दीदी करीबन 1.5 घंटा हम सभी बहनों को बाबा ने दीदी के द्वारा एक सकास दिलाया और दृष्टि देते देते वो घड़ी आई जो दीदी व्यक्त से अव्यक्त हो गई, आंखें सहज रीति से दीदी ने बंद कर दी। बाबा के घर में कदम रखती है तो भी सेवा होती है और जब वो इस साकार दुनिया से दूर जाती है, व्यक्त से अव्यक्त होकर नया जीवन शुरू करती है तो भी सेवा करके जाती है। ऐसी दीदी जब मधुबन में हम आए तो ये सारी बातें सामने आने लगी। तो वैसे तो हम सभी करीबन 45 जितने भाई बहन आए हैं, हमारी 25 जितनी बहनें आई है जूनागढ़ और जूनागढ़ के कनेक्शन के, हमारी बहनें दीव से भी आई, मेंदरड़ा से भी आई, जेतपुर से भी आई और भी कई जगह से, पोरबंदर, भुज, वो सभी बहनें मिलकर के दीदी के लिए, और भाई भी सीनियर सभी आए हैं भोग स्वीकार कराने के लिए। तो आप सभी का हमने देखा, कल से हम शाम को आए तब से लेकर सभी मधुबन निवासी भाई बहनों ने, सभी ने बहुत ही हमें सहयोग दिया, स्नेह दिया, हमारी आदरणीय शशि दीदी जी के साथ साथ आप सभी का बहुत 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 दिल से आदरणीय गीता दीदी के साथ साथ हम धन्यवाद करते हैं। ओम शांति।
इस ग्रुप के साथ में मुंबई से नेहा बहन भी पहुंचे हुए हैं। हाँ नेहा बहन, हाथ खड़ा करो सभा के। आपने भी बचपन से दीदी जी पालना ली हुई है और आप बिना बहन के लौकिक में छोटी बहन है। और अभी गीता दीदी भी हमारे साथ में है, आप भी जरूर कुछ सुनाएं। गीता दीदी जी, आप पोरबंदर में रहते हैं और पोरबंदर के कनेक्शन, पोरबंदर सब सेवाएं संभालते हैं।
ओम शांति। आदरणीय हमारे दमयंती दीदी व्यक्त से अव्यक्त हुए, परिस्ता रूप धारण किया, बाबा मम्मा की पालना छोटेपन से ली हुई थी। 62 में विज्ञान में चले और जब अहमदाबाद आए तो हमारी कहेंगे अलौकिक आध्यात्मिक टीचर अथवा तो माँ कहेंगे, क्योंकि हम बहुत छोटे थे। 13 साल की आयु में 7 दिन का क्लास किया था तो हमारे टीचर रहे, और क्लास जब किया तो 8वें दिन कुमारियों की पार्टी मधुबन आ रही थी, उसमें चंद्रिका बहन, वेदांती बहन, पूर्णिमा बहन और भी सभी थे दो तीन, तो सात जितनी कुमारियां आ रही थी। तो मैंने सात दिन का क्लास किया तो दीदी ने पूछा, दमयंती दीदी ने, आप चलेंगी मधुबन? अब सात दिन में, छोटेपन में थोड़ा बहुत सात दिन का क्लास ज्ञान सुना, बहुत अच्छा लगा, ईश्वरीय प्यार अच्छा लगा, तो मधुबन तो आ गए सात दिन के बाद तुरंत। और उस समय तो जीवन कुमारियों का बहुत सिंपल होता था, तो मधुबन आना मिला। तो ट्रेन में मुझे सिखा रहे थे दमयंती दीदी कि ब्रह्मा बाबा पूछेंगे कि बच्ची यहाँ क्यों आई हो, तो आप उत्तर देना कि बाप दादा से मिलने। अब पोपट की तरह पढ़ा रही थी, तो जब मधुबन पहुंचे तो पहले पहले तो बाबा की झोपड़ी में ब्रह्मा बाबा के पास मिलना होता था तैयार होकर के, और जब आए तो वो और जो छह सात कुमारियां थी वो तो पुराने थे, उनके त्या वहां क्लास चलते थे, एक साल से वो लग चल रहे थे, और मैं सबसे छोटी, तो वो तो सब साड़ी पहन कर आगे खड़े रहे झोपड़ी में, और मैं लास्ट में छोटी थी तो खड़ी थी। बाबा सबको दृष्टि दे रहे थे, फिर मुझे दृष्टि दे रहे थे, तो बाबा ने पूछा कि बच्ची यहाँ क्यों आई हो, तो मुझे जो सिखाया गया था तो मैंने बड़े फलक से कहा बाप दादा से मिलने। तो बाबा ने दूसरा प्रश्न पूछा कि बच्ची बाप कहाँ है, दादा कहाँ है? आप सोचो, मुझे सात दिन के अंदर बाप कहाँ है दादा कहाँ है कैसे मालूमगा? तो मैं तो दृष्टि लेती रही बाबा से, तो दृष्टि लेते हुए मुझे अनुभव हुआ कि सात दिन में मैंने जो सुना है कि शिव बाबा प्यार का सागर है, तो ब्रह्मा बाबा की दृष्टि से मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि जैसे मेरे पर प्यार का दरिया उमट रहा है, सागर उमट रहा है, ऐसे प्रेम का प्यार का मैंने दृष्टि द्वारा अनुभव किया। इस प्रमाण फिर पढ़ाई पढ़ते पढ़ते पढ़ाई पूरी करके हम सेंटर पर रहने का हुआ। तो पहले पहले दीदी बड़ौदा जा रही थी तो मैं भी उनके साथ बड़ौदा सेवा केंद्र पर गई, वहां से फिर दीदी राजकोट गए सेवा में तो उनके साथ गए, फिर जूनागढ़ सेवा केंद्र खुला तो उनके साथ रहने का चांस मिला कई वर्ष। तो कहेंगे कि माँ की तरफ मेरी पालना करते गए और साथ साथ उनको देख देख करके सारे अनुभव के आधार से हमने बहुत कुछ सीखा है, प्राप्त किया है। और हमारे दीदी कहेंगे हजारों लाखों लोगों का देखो कल्याण किया है ज्ञान सुनाकर। अहमदाबाद में भी मैंने देखा दोपहर को कैसे कैसे दूर दूर, उस समय तो इतना यज्ञ में भी पैसा नहीं था तो बस में जाना होता था दूर दूर, दीक्षा भी नहीं। तो ऐसे सेवाएं करते करते ब्रह्मा बाबा ने एक दिवस, मैं साथ में ही थी उस समय, बाबा ने कहा यह फ्रंटियर मेल है, माना बहुत फास्ट सेवाएं की, और मुरली जो सुनाती थी तो सारी मुरली भी रिपीट कर सकती थी, और एकदम आज्ञाकारी थे, जब दादी जी कहे वहां वो सेवा पर जाते थे, या म्यूजियम में कई बार दीदी को, मैं तो छोटी थी, सेवा केंद्र पर मुझे रखा गया, और दमयंती दीदी बार बार दादी के कहने के प्रमाण म्यूजियम की सेवा पर 15-15 दिन देखो आती थी, तो एकदम आज्ञाकारी। साथ में उनका दूसरा गुण बहुत अच्छा था कि कभी भी साकार दुनिया की पर चिंतन की बातें कभी कोई को करती नहीं थी, साथ साथ आज्ञाकारी माना, प्रेमाण माना, कोई अगर विरोधी भी कोई कोई होते हैं ना अभी भी, उस समय भी कोई ऐसे थे
लेकिन उनको प्रेम से इतना चलाती थी उनकी बातें वो देखती ही नहीं थी। यहाँ तक कि वो अंत में भी जाने वाला होता तो भी उनको प्रेम दे दे करके देखो एकदम संभलती थी। तो हमें वो गुण बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने सारा वातावरण, सभी सेवा का वातावरण बहुत शांत और योगयुक्त बनाकर रखा था। ऐसे हमारी दीदी आज हमारे साथ भी है, साथ रहेंगी और ऊपर से जहाँ गए हैं वहाँ से अच्छी अच्छी प्रेरणाएं देती रहेंगी। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हम देख रहे हैं कैसे कैसे विशेष रत्नों को दीदी जी ने घड़ा है, तैयार किया है। और अभी विशेष बिना दीदी, अभी हम लोग बाबा की याद में बैठेंगे, लेकिन उसके पहले विशेष दीदी जी का संकल्प है कि जूनागढ़ की जो विशेष बहनें आई हैं वो थोड़ा मंच पर आकर के हाथ हिलाकर सभा का अभिवादन करें।
जो भी बहनें आई और यहाँ पर दो मिनट में फटाफट सभी बहनें आएंगी और फिर सभी को जो जूनागढ़ से भाई आए हैं वो थोड़ा खड़े हो जाए। रजनी दीदी भी बैठी है, आप सभी का दर्शन करें। जूनागढ़ सब जोन से जो 8-10 भाई आए हैं थोड़ा हाथ हिलाओ। ओके, बैठ जाएंगे अभी। और क्लास के बाद सभी ध्यान में रखे, सीधा हमें हिस्ट्री हॉल में जाना है, यहाँ से सीधा नाश्ते से पहले, और शशि दीदी वहाँ पर हम सभी को मिलेंगे। इसीलिए कोई भी भाई या बहन और कहीं जगह पर ना जाए, सीधा हिस्ट्री हॉल में सभी बैठेंगे। आइए सभी दर्शन करा और सभी इसके साथ योग हम सभी करेंगे। ये सभी हमारे जूनागढ़ और जूनागढ़ के कनेक्शन की सभी पुरानी बहनें हैं। लगभग सभी 25 साल ऊपर वाली बहनें हैं जो यहाँ पर पधारे हैं। आओ निहा बेन, आप भी आओ। ओके, अभी योग करेंगे सभी।